ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नेपाल में संचालित सभी सामाजिक संजालों को कानून के दायरे में आना होगा, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। बागमती प्रदेश में नेपाली कांग्रेस से 5 मंत्री हुए नियुक्त। स्थानीय तह के लिए आवंटित बजट पर ही निर्भर रहकर काम चलाने की प्रवृत्ति का अंत करने की संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री भगवती न्यौपाने ने जताई प्रतिबद्धता। निजामती सेवा विधेयक में कूलिंग पीरियड संबंधी छानबीन समिति के प्रतिवेदन क्रियान्वित करने का सभामुख ने किया निर्देश। और पाकिस्तान में भारी बारिश के कारण 200 से अधिक लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि नेपाल में संचालित सभी सामाजिक संजालों को कानून के दायरे में आना होगा। आईसीटी फाउंडेशन द्वारा आज ललितपुर में आयोजित डिजिटल नेपाल कॉन्क्लेव 2025 के उद्घाटन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि सभी सामाजिक संजालों को नेपाल के प्रचलित कानून के तहत पंजीकृत होना होगा। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने हाल ही में एआई नीति पारित की है और सूचना तकनीक से संबंधित विकास को कैसे रूपांतरित किया जाए, इस बात पर सरकार का पूरा ध्यान है। इस बात का जिक्र करते हुए कि सरकार स्थिरता, सुशासन और विकास में सूचना तकनीक के उपयोग को लेकर स्पष्ट है, प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा। आज ही जनकपुर में मध्य प्रदेश प्रहरी के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को समृद्धि की दिशा में ले चलने के लिए सुशासन और सुरक्षा महत्वपूर्ण शर्त है। मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह ने संविधान की भावना और मध्य सरकार की गति को और अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए प्रहरी समायोजन जल्द करने का संघीय सरकार और प्रधानमंत्री से आग्रह किया। आज ही प्रधानमंत्री ओली ने धनुषा के मनहरपुर हंसपुर होते हुए खरिहानी सिमराढ़ी जोड़ने वाली 16.35 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास किया। बता दें कि यह सड़क 65 करोड़ रूपये की लागत में बनने जा रही है। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री इंद्र बहादुर बानिया ने आज नेपाली कांग्रेस से 5 लोगों को मंत्री नियुक्त कर मंत्रिपरिषद का विस्तार किया है। बता दें कि सामाजिक विकास मंत्री कंचन चंद्र बादे, आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री प्रभात तामांग, युवा तथा खेलकूद मंत्री उर्मिला केसी नेपाल, संस्कृति तथा पर्यटन मंत्री सुरेश श्रेष्ठ और सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री बीनू रायमाझी नियुक्त हुई हैं। नवनियुक्त मंत्रियों को आज एक समारोह के बीच प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटा ने शपथ ग्रहण कराया। प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज घिमिरे ने संघीय निजामती सेवा विधेयक 2080 की रिपोर्ट की कूलिंग पीरियड से संबंधित त्रुटि के मामले में गठित संसदीय जांच विशेष समिति की रिपोर्ट को क्रियान्वित करने के निर्देश दिए हैं। सभामुख घिमिरे ने सभी दलों के संसदीय कार्यालयों, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्रालय, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय और संघीय संसद सचिवालय को आवश्यक क्रियान्वयन के लिए भेजने का निर्देश प्रतिनिधि सभा के सचिव हरकराज राय को दिया है। सभामुख घिमिरे ने प्रमुख दलों के प्रमुख सचेतकों के सुझावों के अनुसार आज संसदीय जांच विशेष समिति की रिपोर्ट के क्रियान्वयन के लिए संबंधित निकायों और मंत्रालयों को भेजने का निर्देश सभा के सचिव राय को दिया। ये जानकारी सभामुख के सचिवालय ने दी। राष्ट्रीय सभा में राष्ट्रीय समावेशी आयोग का आर्थिक वर्ष 2080-81 का 6वां वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया गया है। आज की बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की ओर से संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने राष्ट्रीय समावेशी आयोग का आर्थिक वर्ष 2080-81 का 6वां वार्षिक प्रतिवेदन सदन के समक्ष पेश किया। बैठक में राष्ट्रीय सभा के सचिव डॉ सुरेंद्र अर्याल ने राष्ट्रीय सभा द्वारा सभी 7 प्रदेशों में आयोजित निर्वाचक मंडलों के साथ हुई समन्वय बैठकों का एकीकृत प्रतिवेदन सदन में टेबल किया। राष्ट्रसभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल ने कहा कि बैठक में टेबल किए गए प्रतिवेदन पर सरकार की उपस्थिति में सदन में चर्चा होगी। इससे पहले राष्ट्रीय सभा के आज की बैठक में सांसदों ने देश में संघीयता क्रियान्वयन, जनता की अपेक्षा अनुरूप कार्य, दीर्घकालीन विकास लक्ष्यों की प्राप्ति, देश विकास और समृद्धि जैसे विषयों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। सांसदों ने तराई मधेश की समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल और दीर्घकालिक योजना बनाने, चूरे दोहन पर नियंत्रण करने, किसानों के लिए खाद और बीज की व्यवस्था में देरी न होने देने जैसे मुद्दों पर सरकार का ध्यान खींचा। बैठक में सांसदों ने देश में बढ़ती मानसिक समस्याओं और आत्महत्या के मामलों में वृद्धि का उल्लेख करते हुए मनोचिकित्सकों सहित आवश्यक व्यवस्था करने की मांग भी की। राज्यसभा की अगली बैठक भाद्र 3 गते मंगलवार को दोपहर 1:15 बजे के लिए बुलाई गई है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो 4G नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देववा ने नेपाल और भारत के बीच ऐतिहासिक मित्रता, आपसी विश्वास और सहयोग की परंपरा को रेखांकित करते हुए आगामी दिनों में इसे और प्रगाढ़ बनाने पर जोर दिया। भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नेपाल स्थित भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दोनों देशों की साझा संस्कृति और जनस्तर के संबंधों ने इस रिश्ते को अटूट बनाया है। मंत्री डॉ राणा ने कहा कि व्यापार, प्रविधि, पूर्वाधार और जनता की आकांक्षाओं के क्षेत्र में दोनों देशों को संयुक्त सहयोग बढ़ाकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जलवायु परिवर्तन, दीर्घकालीन विकास और अन्य साझा चुनौतियों के समाधान के लिए नेपाल भारत सहयोग भविष्य में और भी महत्वपूर्ण होगा। मौके पर नेपाल के लिए भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों की पत्नियों और निकटतम परिजनों को सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने नेपाल के सभी 7 प्रदेशों और 21 जिलों में स्थित 39 शैक्षणिक संस्थानों और पुस्तकालयों के लिए पुस्तक अनुदान की भी घोषणा की। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल के समक्ष मुस्लिम आयोग ने आर्थिक वर्ष 2081-82 का वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आज आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति पोडेल के समक्ष आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष महमदीन अली ने प्रतिवेदन पेश किया था। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री भगवती न्यौपाने ने स्थानीय तह के लिए आवंटित बजट पर निर्भर रहकर ही काम चलाने की प्रवृत्ति को समाप्त करने की बात कही है। तन्हों की बंदीपुर गांवपालिका में आज आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री न्योपाने ने कहा कि मंत्रालय में कर्मचारियों द्वारा केवल कुर्सी गर्म करने और स्थानीय तह के लिए आवंटित धन पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति को समाप्त किया जाएगा। मंत्री न्योपाने ने कहा कि सुशासन स्थापित करने और पारदर्शी सेवा प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सभी कर्मचारियों, स्थानीय निकायों और संबंधित सरोकार वालों का सहयोग अपरिहार्य है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भारी बारिश और बाढ़ के कारण काफी नुकसान हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार गुरुवार को प्रांत के विभिन्न जिलों में भारी बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 200 से अधिक हो गई है। वहीं बाजौर में सहायता ले जा रहे एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 पायलटों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंदापुर ने बाढ़ और बारिश से हुई तबाही पर दुख जताते हुए आज पूरे प्रांत में शोक की घोषणा की है। भारत के साउथ ईस्ट दिल्ली के डीएम डॉ श्रवण बागरिया के मुताबिक दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुमायूं के मकबरे के पास स्थित दरगाह शरीफ पत्ते शाह परिसर में हुए हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। दरगाह शरीफ पत्ते शाह परिसर में एक कमरे की छत गिर गई थी। डीएम का बयान आने से पहले पुलिस ने इस हादसे में 5 लोगों की मौत की पुष्टि होने की बात कही थी। मृतकों की संख्या के बारे में जानकारी देते हुए साउथ रेंज के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस संजय कुमार के हवाले से बीबीसी ने बताया कि 9 व्यक्ति एम्स ट्रॉमा सेंटर भेजे गए थे और एक व्यक्ति को LNJP अस्पताल ले जाया गया था। इस घटना में 5 व्यक्तियों की एम्स ट्रॉमा सेंटर में मौत हुई है, बाकी घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि बचाव अभियान पूरा हो गया है, हालांकि घटनास्थल पर एक और दीवार गिरने की आशंका है। संजय जैन ने बताया कि आज दोपहर में कुछ लोग शुक्रवार की नमाज के लिए दरगाह आए थे और बारिश से बचने के लिए उन्होंने दरगाह परिसर के एक कमरे में शरण ली थी। उन्होंने कहा इसके बाद एक कमरे की पीछे की दीवार गिरी जो हुमायूं के मकबरे की ओर जाती है, वो दीवार गिरी और उसके बाद छत गिरने से कई लोग घायल हो गए। अब मौसम अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में संचालित सभी सामाजिक संजालों को कानून के दायरे में आना होगा, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। बागमती प्रदेश में नेपाली कांग्रेस से 5 मंत्री हुए नियुक्त। स्थानीय तह के लिए आवंटित बजट पर निर्भर रहकर काम चलाने की प्रवृत्ति का अंत करने की संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री भगवती न्यौपाने ने जताई प्रतिबद्धता। निजामती सेवा विधेयक में कूलिंग पीरियड संबंधी छानबीन समिति के प्रतिवेदन क्रियान्वित करने का सभामुख ने किया निर्देश। और पाकिस्तान में भारी बारिश के कारण 200 से अधिक लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।